तो आपका कहना यह है कि जितनी देर सिमरन करना हम चाहते हैं या जितनी देर का हमने नियम बना रखा है सिमरन का, उतनी देर मन लगातार उसमें क्यों नहीं लगता? सिमरन करना अच्छा लग रहा है फिर भी लगातार सिमरन क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे का जो मूल कारण है वो हमारे सैकड़ों जन्मों के संस्कार हैं। अनगिनत पीछे हमारी शारीरिक लाइफ रह चुकी है, वर्तमान जन्म में भी हमारी शारीरिक लाइफ है। तो ये सारा जीवन हमने सांसारिक इच्छाएं कर करके और उनकी पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर करके हमने सारा जीवन व्यतीत किया है। तो आप विचार दृष्टि से देखो ये संस्कार कितने प्राचीन और कितने गहरे हैं आपके अंदर। सारी दुनिया ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि तू जीव है जिसकी मृत्यु नहीं है। माता पिता ने पाला तो शरीर करके पाला, इस शरीर का नाम रखा, इस शरीर के द्वारा जो गुण प्रकट हो रहे हैं, अवगुण प्रकट हो रहे हैं, उसके कारण मेरी तारीफ हुई, मेरी बुराई हुई, और जितनी मेरी रिश्तेदारी रही, जो मेरे अपने रहे, जो मेरे दुश्मन रहे, सब केवल शरीर करके ही मैं उनको जानता रहा। तो ये संस्कार मेरे इतने गहरे हो गए कि मैं शरीर ही बन गया। अब जाकर इस जन्म में जब पूर्ण गुरु हमको मिला है या पूर्ण गुरु पर जब हमारी आस्था आई है, उसकी तालीम हमको मिली है, तालीम मिलने के पश्चात भी ज़्यादातर मेरा वक्त इस तालीम मिलने के पश्चात उन्हीं संस्कारों में बीत गया। और इतनी गहराई से शायद मैंने सोचने की ज़रूरत तक नहीं समझी इस पीरियड में। तो जिस भाव से आप जीवन जी रहे हो संस्कार उसी भाव के अनुसार बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपने ये सुन लिया कि ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर शांति रूप है, मुझे ईश्वर मिल जाएगा तो पूर्ण शांति मिल जाएगी, सारी चेतन से सारी परेशानी से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये सुन तो लिया आपने। लेकिन ईश्वर के बारे में भी सही सही निश्चय आपकी बुद्धि में नहीं है, वो भी एक कल्पना करके है, बात करके है कि ऐसा ऐसा ईश्वर के बारे में कहा जाता है। तो जब कोई ठीक ठीक एनालिसिस या कहिए ठीक ठीक निश्चय किसी वस्तु के बारे में जब नहीं होता है तो उस वस्तु को प्राप्त करने में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ में इतनी गहराई नहीं होती कि जिसको कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य बन जाए और उसके लिए जिए। दिल जो टूटता है, चोट खाता है, वो आप देखोगे स्वार्थ में चोटें खाता है, चाहे वो अपने परिवार का पालन हो, चाहे वो अपना कैरियर हो या जो भी हो। ईश्वर प्रायण जीवन छोड़कर सारा स्वार्थ कहलाता है, तो उसकी चोट मेरे ऊपर आज भी देखो कितनी गहरी लगती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर कोई सहायता नहीं कर रहा, उसकी याद इस हालत में हम कर ही नहीं पाते। वैसे तो फिर भी आपको याद आ रही है, लेकिन जब चोट लगती ना तो ईश्वर की याद भी हमारी लड़खड़ा जाती है। तो ये सिद्ध करता है, ये हमारी जो पोजीशन ये सिद्ध करती है कि हमारे अंदर संस्कार अभी भी देह के ही गहरे हैं। मैं देह हूँ ये भाव बहुत दृढ़ है, और जैसा मेरा चिंतन करने का तरीका है वो भी गलत ही है, क्योंकि चिंतन करने का तरीका मेरा सारा सांसारिक है, और जो गुरु चिंतन करने का तरीका दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि वो चिंतन का तरीका ही आपको ईश्वर से जोड़ेगा, वो चिंतन का तरीका ही आपके जीवन में हर दिन महत्व को बढ़ाएगा, संसार के महत्व को कम करेगा। और चिंतन करते करते आप खुद देखोगे कि एक दिन आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा कि बस संसार की क्रिया तो आपके शरीर के द्वारा हो रही है, लेकिन दिल आपका इसमें कोई नहीं लग रहा है, अपने बच्चों में भी दिल नहीं लग रहा है। उस समय आपको पता लगता है कि कर्तव्य बोध क्या होता है, कर्तव्य बोध से कैसे कर्म किए जाते हैं, विवेक इतना पक जाता है, इतना पक्का हो जाता है, समझे? तो जब सही जिंदगी की समझ आती है, सही ईश्वर के स्वरूप की कह लें, या ईश्वर के क्रियाकलाप की कह लें, या ईश्वर की शक्ति की कह लें, उसकी समझ आती है और अपनी समझ आती है, तो फिर इसके अंदर ये जो बंधन था बचपन से लेके आज तक और कितने जन्मों का, इस बंधन के प्रति जो कुछ भी जिस चीज का भी बंधन था आपके अंदर, उसके प्रति राग आपके अंदर फिर टूट जाता है। इस देह की और संसार की वास्तविकता का जब बोध बुद्धि में पक्का होता है तो इसका राग टूट जाता है, उसने टूटना ही है, क्योंकि जहां संतोष नाम की चीज है ही नहीं, महा जी कहते हैं प्रेमी हर जीव संसार में संतुष्टि की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है। अब संतरवास के वर्ड्स देखिए, हर जीव इस संसार में संतोष प्राप्ति की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, लेकिन किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब ये गुरु का निर्णय है, या यूं कहिए कि ईश्वर का निर्णय है, जो हमारे मन की हर चीज को जानता है। मैं नहीं जानता अपने मन की हर चीज को। तो सब जितने भी जीव हैं अपने मन के कारण ही तो बेचैन है, क्योंकि मन की इच्छा के लिए कोशिश करते हैं। देह तो एक कोशिश करने का यंत्र है ना। कौन सी कोशिश करते हैं? जो मन में डिजायर मुझको बेचैन करती है, उस डिजायर को पूर्ण करने की हम कोशिश करते हैं। इसी का नाम सफलता है संसार में, और इसी का नाम सुख की प्राप्ति है संसार में। तो संसारियों का कभी यह निर्णय हो सकता है क्या? आप विचार करके देखो, कभी भी किसी भी काल में आपको ऐसा नजर आता है कि संसारियों का यह निर्णय हो जाएगा कि इस संसार में हर संसारी सुख प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह निर्णय हो जाएगा संसारियों का? कभी भी, तो इसका मतलब वो सारी जिंदगी अविवेकी ही रहेंगे। अब मैं सत्संगी हूं, मैं कहता हूं मेरे अंदर ईश्वर विश्वास है, मुझे ईश्वर चाहिए, लेकिन जब ईश्वर चाहिए तो क्या नहीं चाहिए वो, उसका भी तो ख्याल होना चाहिए। जब तेरी बेचैनी के कारण तेरे ही मन की डिजायर है, तेरे ही मन की अपेक्षाएं हैं, तो बाहर से सहायता कहां मिलने वाली तुझे? तेरा बंधन तो तेरे अपने मन में मौजूद है, बाहर कहां बंधन है? तो इसीलिए जब तक तेरे अंदर ये समझ ही पैदा नहीं होगी, गुरु का वाक्य मैं पढ़ गया, डायरी में कोटेशन भी लिख लिया मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन मेरी क्या है? देखो तो संत रविदास में ये लिखा है और वाणी में भी ये लिखा है, दोनों में देख लिया कोई अंतर है? कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। वहां मन का मतलब है जीव से, देखो तो जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ देखना पड़ता है, ये वर्ड किस वास्ते प्रयोग किया गया, क्योंकि हम उसका फिर उल्टा सीधा मन मीनिंग निकाल लेते ना फिर। तो कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, जीव को कोई भी संसार की वस्तु धीरज नहीं दे सकती। मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर, इस जीव की सारी बेचैनी केवल गोविंद का नाम हर सकता है। तो बता तेरे लिए संसार में क्या बचा? ना तेरी संतान तुझको संतोष दे सकती, ना तेरे माता पिता तुझको संतोष दे सकते, ना समाज तुझे संतोष दे सकता, ना ये पांच तत्वों की प्रकृति तुझको कुछ दे सकती है। तेरा विवेक यदि यहां खड़ा हुआ है, अब तेरे लिए संसार में बचा क्या था? कभी सोचा तूने? कभी मैंने इस तरीके से वाणी को पढ़कर समझने की कोशिश की क्या? आप खुद देखो जरा, बड़ी वाणी पढ़ी होगी आपने, बड़े कोटेशन नोट किए होंगे, बड़े सुनाए होंगे, लेकिन आपने कभी इस तरीके से वाणी का अर्थ करके समझने की कोशिश की? कितना स्पष्ट निर्णय है वाणी का, जरा विचार करके देखो। संत रविदास भी वही कह रही है कि हर जीव इस संसार में संतोष प्राप्ति की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने गुरु बना लिया, गुरु की इस बात को मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं, गुरु की इस बात पर यदि ध्यान दिया होता, ध्यान का मतलब ये होता है गहरी गौर करना, और उसका दूसरा मतलब होता है गहरा मनन करना कि मेरा गुरु कहे क्या रहा है। अरे गुरु तो साफ निर्णय करा है कि पूरी दुनिया में ना आज तक ऐसा जीव कोई पैदा हुआ, ना आज के दिन धरती पर है, ना भविष्य में कभी होगा, जो संसार में सुख की तलाश या सुख की आशा करके जो कोशिश कर रहा है, ये उसको पता ही नहीं है इस अज्ञानी जीव को, तुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी इस संसार में, पूरी तरह से विफल होकर ही संसार में से जाएगा, तो पूरी तरह से 100%। क्योंकि जब संतोष प्राप्ति के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, संतोष में मिल नहीं रहा है, वो मिलेगा भी नहीं, गुरु लिखकर दे रहा है, तो मेरा जीवन सफल हो गया या विफल हो गया? 1% भी सफलता मिली इसको? बल्कि ये अपना पतन करके संसार से जा रहा है, क्योंकि ये संस्कार ये और गहरे कर लिए इसने, सांसारिक कर्म करके सुख प्राप्त कर लूंगा, संतोष प्राप्त कर लूंगा, ये संस्कार इसने और गहरे कर लिए। इसीलिए अध्यात्म में कहा जाता है जो तमोगुणी रजोगुणी जीवन व्यतीत करते हैं उनका मानव जन्म भी छिन जाता है, वो पशु देह उसको प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही कहाँ है। तो जीने का जब मैंने ये तरीका अपनाया, इस जन्म में भी सोच लूँ कितना लंबा वक्त मैंने इस निश्चय के साथ व्यतीत किया है, अब सिमरन की जरूरत मुझे समझ आ रही है, अब नहीं अभी भी विवेक मेरा ठीक नहीं है, वहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन बैठे हुए बीच बीच में, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ गया, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका ही बता रहा है कि मैं अभी पढ़ना भी नहीं जानता, समझना तो बात बात की छोड़ो, जी किस लापरवाही से पढ़ता हूँ सत्पुरुषों की बातों। तो बड़ा स्पष्ट निर्णय है आपका, विश्वास समता विलास समता प्रकाश ग्रंथ पे तो है, गुरुवाणी है इसमें, तो क्यों नहीं मैंने आज तक सोचा इस बात के लिए कि वाणी पर भरोसा, तो वाणी साफ निर्णय दे रही है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धी, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। मैं अपनी बेचैनी हरण करना चाहता हूं, मेरी बेचैनी बेचैनी से मुक्त हो जाओ, और संसार में वस्तु है नहीं जो तेरी बेचैनी दूर कर दे। तो तू संसार में क्या खोज रहा है, आज भी क्या खोज रहा है तू, आज भी तो तेरे मन में यही निश्चय है ना, संसार ना बिगड़ जाए, करतार तो मिल जाए, सिमरन मेरा पूरा हो जाए, लेकिन संसार बिगड़ना नहीं चाहिए, यही तो है ना तेरा निश्चय। ईमानदारी से सोच, तेरे अंदर ये निश्चय है या नहीं है। फिर तू चाहता है कि जब प्रेम से सिमरन करने बैठूं मेरा मन हटे ही ना वहां से, तो निश्चय तो तेरा अंदर का वहां बैठा हुआ है, संस्कार तो वो बने हुए हैं, फिर ये मन कैसे वहां लग जाएगा। तो जो संस्कार गहरे हैं मन उधर जाएगा या नहीं जाएगा स्वाभाविक रूप में, जिधर ढलान होगा पानी उधर बहेगा या नहीं बहेगा, या उल्टी दिशा में बहेगा। तो उल्टी दिशा में पंप पानी को दिए बहाना है तो पंप लगाना पड़ेगा, तो यही पंप है, विचारों का पंप, विवेक का पंप है। तो जैसे जैसे विवेक स्ट्रांग होता है, वैराग्य स्ट्रांग होता है, ये पानी का फ्लो जो नेचुरल डायरेक्शन को प्रकृति की तरफ को है, ये करतार की तरफ को बहने लगता है। तो इसीलिए ये लंबा कार्य है, इसीलिए प्रार्थना में आरती में ये डिमांड की गई है, प्रभु से प्रार्थना की गई है, होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार। इसमें अपार धैर्य की जरूरत है, ये फटाफट की चीज नहीं है। चार दिन सिमरन किया और चार दिन से प्रेम हो गया सिमरन करने में, सारा कार्य मेरा फटाफट फटाफट हो जाना चाहिए। कितने जन्म मैंने छलांगे मारी हैं संसार में, और वर्तमान जन्म में भी कितना रोया हूं संसार के लिए मैं, अब चाहता हूं करतार मिल जाए। तो संस्कारों का परिवर्तन करना है तुम्हें, और ये संस्कारों का परिवर्तन स्लो प्रोसेस है। ये तमोगुणी रजोगुणी संस्कार है मेरे अंदर, सतोगुणी संस्कार मैंने बनाने हैं, और सतोगुणी संस्कार बनते ही हैं उस कर्म के द्वारा, उस चिंतन के द्वारा जो केवल इसको ईश्वर की ओर ले जाता है। इसीलिए सेवा कर्म भी जब करने की बात कही जाती है, सतोगुणी सेवा कर्म तब बनता है जब वो ईश्वर परायण होकर किया जाए, निष्काम भावना से किया जाए। निष्काम नहीं होता मैं, लेकिन निष्काम भावना होनी चाहिए इसमें। तो एक कर्म भी यदि मैंने करना है, अच्छा कर्म करना है, तो उसके लिए अंदर से कैसा विवेक चाहिए, कितनी अलर्टनेस चाहिए, जरा विचार करके तो देखो, तब आपका स्वभाव सत्वगुणी बनेगा। जब इस प्रकार का जीवन आप लंबे समय तक व्यतीत करोगे, तो धीरे धीरे ये महाज कहते हैं प्रेमी, ये तमोगुणी रजोगुणी संस्कार दब जाते हैं, वो कहते हैं दब जाते हैं, और सतोगुणी संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं, ये प्रबल हो जाते हैं या गहरे हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब सिमरन करता है, वो भी गुरु मंत्र का, सिद्ध मंत्र का, तब सिद्ध मंत्र का काम है ये मन के संस्कारों को की सफाई करना, इसकी जड़ ये मंत्र साफ करता है। तो खुद देखो आपने कितने दिल से और कितना गुरु की बात मान के सिमरन किया है आपने, जो कह रहा मेरा मन लग जाना चाहिए, जरा विचार करके देखो कितने दिन हुए, कितना सा टाइम बीता है आपका, और इस मंत्र ने संस्कार साफ करने आप, तो उनकी सफाई हुई कहाँ, तुमने टाइम कितना दिया था, गुरु ने तो लिख के दिया ना, कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम एक घंटा सुबह एक घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। तुझे 35 साल की उम्र में होश आया, अब चाह रहा है मेरा मन लग जाए और बिल्कुल ठीक ठीक सिमरन होना चाहिए मेरा, कहां से हो जाएगा? अब तूने शुरू किया है, वो भी पूरा विवेक नहीं है तेरे अंदर, पूरा वैराग्य भी नहीं, उसके लिए भी कोशिश नहीं करी ईमानदारी से तूने। तो इसीलिए ये कार्य हमको कठिन नजर आता है, जबकि ये कार्य है सबसे सरल, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं, चैन से बैठे रहना है और प्रेम से प्रभु की याद करनी है। सबसे सरल है या नहीं? अब बताओ मुझे, करने में सबसे सरल है, नहीं है? कोई सामग्री नहीं चाहिए इसके लिए आपको। लेकिन जो संस्कार हमारे हैं पास्ट के बनाए हुए, उन संस्कारों के कारण ये काम सबसे कठिन नजर आता है हमको। उन संस्कारों के कारण ये कार्य मुझको सबसे कठिन नजर आता है। जो सबसे सरल कार्य है इस जीव के लिए, वो इस मनुष्य को सबसे कठिन नजर आता है। ऐसे ऐसे प्रेमी मिले हैं जो कहते हैं आंख बंद करके जैसे सेवन स्टार्ट करते हैं मन करता है कि उछल के खड़े हो जाए। संस्कार बोल रहे हैं जी, इतनी आदत डाल ली संसार में सोचने की, एंजॉय करने की, घूमने फिरने की, कि आंख बंद करना उनके लिए एक असंभव जैसी बात हो गई। तो उनके मुकाबले तो हम बड़े अच्छे हैं, उनके मुकाबले में तो हम बड़े अच्छे हैं। लेकिन गुरु आपको कहां ले जाना चाह रहा है वो भी तो देखो। अभी तो आप अपनी देह के भी मालिक नहीं हो, अपने घर के भी मालिक नहीं हो, आपकी संतान ही आपकी बात नहीं सुनती है, कहां सारे ब्रह्मांड के मालिक बनने वाले हो आप? और कार्य बड़ा सरल समझ रहे हो उसको, विचार करके तो देखो। क्या ये इतना कार्य छोटा हो सकता है? तो इसीलिए ऐसे ही आरती में नहीं कहा गया कि देवें धीर अपार, उस धैर्य की सीमा ही कोई नहीं है, कितना धैर्य चाहिए इसका। महर्षि रमण की हालत देखो, समाधि में बैठे हैं, वो भी लोगों से बचने के लिए मंदिर की गुफा में बैठे हुए हैं, बच्चे वहां भी पत्थर फेंक रहे हैं उनको, वहां भी कह रहे हैं पागल है ये, और देह को उनके जानवर खा गए सब, कीड़े मकोड़े। बहुत कुछ कर सकते थे समाधि वाले के व्यक्ति के अंदर, कितनी सिद्धियां होती हैं आप जरा कल्पना करके तो देखो, सब कुछ समर्थ है करने में वो, लेकिन वो लेश मात्र भी कोशिश नहीं कर रहा है। वही 10 गुरुओं की लीला देखो आप जरा, तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं, गरम रेत डाली आ रही है, तेरा भाना मीठा लागे, उस हुक्म में जी रहे हैं बस, क्योंकि उसको हुक्म के बिना पता है हिल रहा है मुझे ये दिखाई पड़ेगा ना फिर, तो यदि मेरे अंदर कर्तापन है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ, जितनी सामर्थ्य कोशिश करता हूँ, वो करनी भी चाहिए, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ करनी भी चाहिए। ठीक है, उन सत्पुरुषों की बात तो देखो ना, जिनके अंदर जो सर्व समर्थ हैं, मुगलों को उठा के तो है, एक इशारे में मुगल को उठाए फेंक दें, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। तेरा भाना मीठा, वो जान रहे हैं ईश्वर हुक्म में ये सारी लीला हो रही है, वो इसको जान रहे हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं उनमें और मुझमें इतना अंतर है। तो कितना धैर्य चाहिए, वाणी के जो शब्द हैं वो देखो तो सही, प्रैक्टिकली सत्पुरुष से मिलान तो करो, कि यदि मुझे वो स्थिति चाहिए जहां मेरा मन मुझको बेचैन ना कर सके, तो धैर्य कितना चाहिए वो भी तो देखो। और मैं कैसे छलांगे मार मार के घूमता हूं, इतना सा भी धैर्य नहीं है मेरे अंदर, स्थिति मुझे वो चाहिए। तो इसीलिए इन शास्त्रों को जैसे जैसे गहराई से पढ़ोगे, इस पर गहरा मनन करोगे और सत्पुरुषों के जीवन से उन बातों को समझोगे आप कि ये ऐसी बातें हैं या सत्य हैं ये, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने उतावले हो रहे हो, आपका उतावलापन आपको समझ में आ जाएगा। इस मार्ग में चलने में कितनी स्थिरता चाहिए और कितनी लगन चाहिए। तो इसीलिए अभी तो हम चले ही हैं, अभी तो हमने चार कदम ही उस ओर रखे हैं। तो इसीलिए जब तक आप दृढ़ता से गुरु की बात मानोगे नहीं, कम से कम उतना प्रयास हो आप करोगे ही या करना ही चाहिए जितना गुरु ने आपको लिख कर दिया है। वो तो कम से कम लिख रहे हैं ना, ये वर्ड लिखे नहीं लिखे वहाँ पर, मिनिमम प्रोग्राम दिया है, क्योंकि तेरा लक्ष्य वो है भैया। तू तो अभी यही कन्विंस कर रहा है अपने आप को अपनी अक्ल से कि ऐसा थोड़ा हो सकता है, आजकल जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सब, मेरी भी और मेरे बच्चों की भी, तू तो यही समझ रहा है ना। तो ईश्वर कर्ता कहां से हो गया, कर्ता तो तू ही है। तो इसीलिए हमारी जो चाल है, हमारी जो सोच है, वो देखें ना जरा, फिर पता लगेगा कि मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर रहा हूं, करनी मेरी वैसी नहीं है। रिजल्ट तो करने के हिसाब से मिलते हैं ना, तो करनी मेरी वैसी नहीं है, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर रहा हूं। तो इसीलिए शास्त्र का जब गहराई से चिंतन करोगे तब आपको ये बातें खुद समझ में आ जाएंगी, फिर इस तरह के प्रश्न आपके मन में नहीं उठेंगे, खुद समझ में आ जाएगी बात। धीरे धीरे कर्मना धीरे सब कुछ होए, ये चलने वालों के लिए बात है, ये धीरे धीरे करके बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है धीरे धीरे चलो, ना ना ना, गुरु जैसा करा है उस मिनिमम प्रोग्राम पे तो चलो ही आप, लेकिन ये संस्कारों का जो परिवर्तन है ये धीरे धीरे होता है। इसका मतलब कोई अर्थ ये ना निकाले, लोग निकाल लेते हैं अभी 10 मिनट जाप करते हैं फिर 15 मिनट कर लेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं, लोग ऐसे ही इंटरप्रिटेशन करते हैं चीज़ों का। तो जैसे जैसे हमारे अंदर इस अध्यात्म की समझ आएगी, इसीलिए कही जाती है बार बार कि शास्त्रों को गहराई से पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि वहां निर्णय दिए हुए हैं और उस निर्णय को तू पढ़ रहा है, तेरा निर्णय बन नहीं रहा है वो, इसलिए जब तक तेरा निर्णय बन नहीं जाता उसका गहरा चिंतन गहरा मनन जरूरी है। मनन का मतलब ये होता है कि उसकी डिटेल्स के बारे में सोचना, जो वहां नहीं लिखी हुई है, अन्य जगह मिल जाएंगी आपको, लेकिन तूने सोचना है। जैसे कि किसी लेक्चर में आपको डिटेल्स बताई जाती ना, एक कोटेशन बताया जाता है या एक पैराग्राफ बताया जाता है, तो उसकी डिटेल्स समझाई जाती है कि ये कैसे है। जैसे एक फार्मूला मैथमेटिक्स का छोटा सा होता है, उसका डेरिवेशन 2 पेज में आता है, तो अध्यात्म में भी यही है कि हर कोटेशन एक फार्मूला है, उसकी डिटेल्स आपने खोजनी होती है। अन्य सत्पुरुषों की मदद ली जाती है, अन्य ग्रंथों की भी मदद ली जाती है। तो इसीलिए निर्णय तो स्पष्ट दे दिया गुरु ने कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, इस जीव को कभी धीरज संसार में नहीं आ सकता। और धीरज का जो विलोम शब्द होता है, जो अपोजिट शब्द होता है, वो होता है बेचैनी। तो तू अपनी जिंदगी संसार में खर्च करके है बेचैनी कमा रहा है, अपने बच्चों के लिए भी यही कर रहा है, खुद भी जिंदगी भर तूने ये किया। क्योंकि ये निश्चय तो संसार ने दिया ही नहीं तुझको, अब गुरु दे रहा है ये निश्चय, इस पर कितना मनन करना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा आपको। समता व्रास ने जो कुछ भी लिखा है सारे इसी बात के निर्णय के बारे में सोचने के तरीके हैं, वो और कुछ नहीं है। वासना विवेक योग मार्ग बोध सब इसी सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन में है। आप जब समझोगे समता व्रास को तब पता लगेगा अरे महाराज जी कह क्या रहे हैं। इस वचन का ठीक ठीक निर्णय हो जाए, मेरी बुद्धि में बैठ जाए, इसके लिए सारी डिटेल्स है। हर एंगल से जब संत रविदास पढ़ोगे तब इसी निर्णय पर पहुँचोगे। तो ये निर्णय आप एक्सेप्ट करोगे संत रविदास का कि हर जीव संसार में संतोष प्राप्ति की खातिर जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष की प्राप्ति हो नहीं रही है। अब तूने पढ़ लिया, अब ये तेरे लिए प्रॉब्लम बन जाना चाहिए था, ये सेंटेंस ये तेरे लिए एक मिस्ट्री बन जाना चाहिए था सेंटेंस, ये गुरुदेव कह क्या रहे हैं। अब तू इसका उत्तर संत रविदास में खोजता, ये बात कैसी है, तो तू इसी सेंटेंस पे पीएचडी कर लेता। संत रविदास तुझको पीएचडी करा लेती, पूरी थीसिस लिखकर सबमिट कर देता था और तेरी थीसिस वो एक्सेप्ट भी हो जाती। तूने इतना मनन किया क्या? इसको मनन कहते हैं। तू सीख जाता यदि मनन करता ना, तो सिद्ध कर देता कि ये बात गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, ये क्यों सत्य है, उसका क्यों का सारा तेरी थीसिस में रिप्लाई होता, थीसिस कंप्लीट। और कोई प्रोफेसर लिटरेचर का होना तो मैं उसको दे सकता हूँ ये सब्जेक्ट थीसिस के लिए, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है थीसिस के लिए, इस पर पीएचडी डिग्री मिल जाएगी आदमी, पक्की बात। तो बताइए कितना सोचने की जरूरत है, क्या मैं शास्त्र के वचन को इस गहराई से कभी लेता हूं मैं? तो इसीलिए ये सिमरन में अब मेरा मन लगने लगा है, अब मैं चाहता हूं मैं बैठा रहूं 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन 1 घंटे का टाइम लेके बैठा हूं, यदि मेरा मन कर रहा है 1.25 घंटे बैठ जाऊं, अब मन कर रहा है उठो, 1 घंटा हो गया तेरा, क्योंकि ये तो नए नए संस्कार है ना, और इतने लंबे संस्कार लिए बैठा है मन, वो खत्म हो गया क्या? वो तो उठा देंगे तुझे। इसीलिए ये लंबा प्रोसेस है, इसमें बेचैन नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए सिमरन अपनी करने की, और मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए अपने विवेक और वैराग्य को बनाए रखने की। तो देखोगे कि ये संस्कार तेजी से, जो नए संस्कार हैं, सतोगुणी संस्कार, सिमरन के संस्कार, ईश्वर प्राप्ति के संस्कार, ये मन में धीरे धीरे गहरे होते चले जाएंगे। जब गहरे होंगे तो संसार के संस्कारों का जो खिंचाव है, तो बार बार उसके फ्लैशेज मन में उठते हैं, वो देखोगे उसकी जान धीरे धीरे निकल रही है, वो संस्कार धीरे धीरे वीक पड़ रहा है, यही आपकी प्रगति है। ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत आगे की बात है वो, लेकिन यही आपकी प्रगति है, क्योंकि जीवन लीला तो किसी दिन भी खत्म हो सकती है, कल एक्सीडेंट से मेरी मौत हो सकती है, तो देही तो मरेगी ना, ना ये संस्कार मरेंगे, ना मेरा मन मरेगा, ना मैं मरूंगा, तो जा क्या रहा है मेरे पास, घबरा क्यों रहा हूं मैं? इसलिए महाजी कहते थे कि प्रेमी जो दिन भी तुझको मिला है जीने के लिए, उस दिन तू अपना पूरा गंभीर प्रयास कर, बस तेरी यही ड्यूटी है, आगे की ईश्वर पे छोड़ दे, वो मालिक है। इतना विवेक तेरे अंदर होना ही चाहिए कि प्रभु अंतर्यामी है और मेरे जीवन दाता है, मेरे मालिक हैं वो, और मेरा उनका संग मौत भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूं, क्यों चिंता करना चाहिए मुझको, लापरवाही से बचा रहूं, क्योंकि ताकि मुझको मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाए और इस जन्म में लगातार प्रयास करता रहूं ताकि सतोगुणी संस्कारों का निर्माण हो जाए, क्योंकि अगले जन्म की दिशा वही गुण तय करेंगे, वहां जो परिस्थितियां मिलेंगी, जो स्वभाव मिलेगा, जो साधन मिलेंगे, वो तेरी कमाई के अनुसार मिलेंगे। तो इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं सोचूं, उसके अनुसार कर्म करने की कोशिश करूं, तो ये जीवन सफल है। चाहे सिमरन में आपको इस जन्म में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन संस्कार आपके बनेंगे ही, सफलता विफलता तो हमें लग रही है ना, लेकिन रामकुछ परमंश की बात याद रखें, वो कहते हैं कि एक बार भी ईश्वर का लिया हुआ नाम खाली नहीं जाता, और ये बात महर्षि रमण ने भी कही है, एक बार भी ईश्वर का लिया हुआ नाम खाली नहीं जाता। तो एक घंटा सिमरन कर रहा है, दो घंटे सिमरन कर रहा है, वो खाली कैसे चला जाएगा? वो अपना काम कर रहा है। तू लापरवाही मत कर, पूरी ताकत से, पूरी जिद से, दृढ़ इच्छा से, या यूं कहिए पूरी लगन से तू प्रभु के मार्ग पर चलने की कोशिश कर, और संसार के बारे में, देह के बारे में उसी प्रकार सोच जैसा शास्त्र मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो तेरा जन्म सफल है। चिंता क्यों करता? ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।